समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या है उनके पास खास। खेल के मैदान की हलचल होगी, बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज के अंक में मैं हूं धर्मेन्द्र मणि राजेश और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी वीसी प्रमोद। प्रमोद, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार धर्मेंद्र। कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आपको धर्मेंद्र बुलाऊं या राजेश बुलाऊं। आपके इतने दोनों इतने अच्छे नाम हैं।
जी, मेरे तीन तीन नाम हैं, धर्मेंद्र भी हैं, मणि और राजेश भी।
एब्सोल्युटली, तो आज मैं आपको राजेश बुलाऊंगा।
जी,
वेलकम लिसनर्स टू परिक्रमा। यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM गोल्ड। एंड एज धर्मेंद्र राइटली सेड, वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, बट वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। कैंपेनिंग फॉर 7th एंड लास्ट फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शंस गेन्स मोमेंटम।
चक्रवाती तूफान रेमल भीषण तूफान में बदला। तूफान के असर से आज आधी रात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के बीच भूस्खलन होने की संभावना।
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिगिन्स प्रोब इनटू राजकोट फायर ट्रेजेडी। गुजरात हाईकोर्ट टेक्स सीओ मोटो कॉग्निसेंस ऑफ द इंसिडेंट।
दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बच्चों के अस्पताल में भीषण आग लगने से 6 नवजात शिशुओं की मौत और कई घायल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मृत्यु पर शोक व्यक्त किया।
एंड इन आईपीएल क्रिकेट, सनराइजर्स हैदराबाद टू टेक ऑन कोलकाता नाइट राइडर्स इन समिट क्लैश इन चेन्नई दिस इवनिंग। And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we'll talk about Remal.
ये कितने आश्चर्य की बात है ना प्रमोद। एक तरफ जहां दिल्ली में अभी मैं आ रहा था तो इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी तेज धूप,
जी,
आदमी पसीने पसीने हो रहा है, जो है पानी की आवश्यकता महसूस हो रही है, और वहां दूसरी तरफ देखें तो इस आग उगलती गर्मी का सामना हम कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एक और बड़ी मुश्किल जल्द सामने आने वाली है,
जी, साइक्लोन रेमल।
जी, और इसकी चेतावनी मौसम विभाग ने दे दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव आज शाम तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और रात को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समुद्र तटों पर दस्तक दे सकता है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक दे सकता है। ये 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकता है। मौसम विभाग ने आज और कल पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल परसों अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। तूफान के दस्तक देने के समय समुद्र में 1.5 से 2 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है, जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाके डूब सकते हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल सुबह तक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज और कल पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों दक्षिण और उत्तर 24 परगना के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहां कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका है।
दैट्स राइट। इससे पता लगता है धर्मेंद्र की नेचर के ऊपर हमारा कोई वस नहीं चलता ना।
बिल्कुल, कोई कंट्रोल नहीं।
जी, ऑन संडे द बांग्लादेश मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एलिवेटेड इट्स स्टॉर्म डेंजर सिग्नल टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ 10 फॉर 2 पोर्ट्स एंड 9 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट इन द साउथ एशियन कंट्री, इशूइंग वार्निंग्स वाया लाउडस्पीकर्स। द IMD वार्न्ड ऑफ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल इन नॉर्थ ओडिशा ऑन संडे एंड मंडे ओइंग टू weather system. Extremely heavy precipitation is also likely in Assam and Meghalaya, and heavy to very heavy rains in the other northeastern states of Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh and Tripura on Monday and Tuesday.
और कोलकाता जाने वाली सारी फ्लाइट्स करीब 21 घंटों के लिए सस्पेंड कर दी गई है, और आज दोपहर 12 बजे से कल सुबह 9 बजे तक ये बंद रहेगी। रेमल तूफान की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह फैसला किया है। एयर इंडिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए एडवाइजरी जारी की है कि एयर इंडिया के सभी फ्लाइट्स आज और कल रिशेड्यूल किए गए हैं। भारत मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी की वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह फैसला किया है।
That's right. The Indian Navy has initiated preparatory actions following existing standard operating procedures, SOPs, to mount a credible humanitarian assistance and disaster relief, HADR, response in the aftermath of the Cyclone Remal. Coast on the intervening night of May 26th and 27th. The situation is being closely monitored at Naval Headquarters, with comprehensive preparatory actions being undertaken by the headquarters of the Eastern Naval Command. Cyclone Remal, which is expected to intensify into a severe cyclone, is forecasted to make a landfall between Sagar Island, West Bengal, and Kepupada, Bangladesh. In preparation, the Indian Navy has ready two ships equipped with HADR and medical supplies for immediate deployment to ensure the safety and welfare of the affected populace.
Aur Pramod, aap jante hain ki Remal kya hai? Remal ek Arabi shabd hai jiska matlab hota hai ret. ये नाम ओमान का दिया हुआ है. रेमल एक चक्रवाती तूफान है. तूफान वायुमंडलीय विक्षोभ या डिस्टरबेंस की वजह से आते हैं. ये कम दबाव वाले क्षेत्र में बनता है. समंदर के ऊपर गर्म और नम हवा उठती है. फिर जब ये किसी ठंडी सतह से टकराते हैं तो तेज बारिश होती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं. फिर यह तूफान का ये रूप ले लेती हैं.
एब्सोल्युटली.
तो ओमान का इसका नाम रखने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एक सवाल उठता है.
ये मेरे भी जहन में आया था
जी. यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, जिसके 185 मेंबर हैं. WMO ने साल 1972 में उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र, जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के दोनों देश शामिल हैं, में चक्रवात साइक्लोन की चेतावनी और आपदा की रोकथाम के लिए पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पीटीसी की स्थापना की. शुरुआत में पीटीसी में कुल 8 सदस्य देश शामिल थे. तब भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड इसके मेंबर थे. साल 2018 में पीटीसी का विस्तार हुआ और इसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को भी शामिल किया गया. और साल 2000 में ओमान की राजधानी मस्कट में पीटीसी का 27वां सत्र आयोजित किया गया. इस सत्र में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले चक्रवाती तूफान को नाम देने पर सहमति बनी. तय किया गया कि इस क्षेत्र में जो भी तूफान आएंगे उसका नाम पीटीसी के मेंबर बारी बारी से रखेंगे. इसके बाद साल 2004 से इस क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण शुरू हुआ.
वाओ, दैट्स नाइस.
अगर आप जानकारी और चाहें तो मैं ये भी बता सकता हूं कि अप्रैल 2020 में पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी पीटीसी ने चक्रवाती तूफान 169 नाम वाली एक लिस्ट जारी की. इसमें हर देश ने 13-13 नाम सुझाए थे. फिलहाल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई साइक्लोन आता है तो इन्हीं 169 नाम की लिस्ट से तूफान का नाम रखा जाता है. और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी नाम आप रख सकते हैं.
जी जी.
पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के हर मेंबर को अल्फाबेटिकल आधार पर चक्रवात का नाम रखने का मौका मिलता है. पर इसके लिए भी नियम बने हुए हैं. ऐसा नहीं है कि जिसके मन में जो आए वही नाम रख दे. नाम रखने के लिए पैरामीटर बनाए गए हैं. तूफान का नाम न्यूट्रल होना चाहिए. उसका किसी भी तरह से राजनीतिक या अराजनीतिक चेहरे, धर्म, समुदाय, लिंग अथवा संस्कृति से कोई संबंध या जुड़ाव नहीं होना चाहिए. तूफान का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से किसी धर्म, समुदाय अथवा व्यक्ति की भावना को किसी तरह से ठेस पहुंचे. साथ ही साथ तूफान का नाम अपमानजनक अथवा क्रूर भी नहीं होना चाहिए. नाम ऐसा होना चाहिए जो छोटा हो, बोलने में आसान हो और पीटीसी के किसी सदस्य देश को इस पर आपत्ति न हो. तूफान का नाम अधिकतम 8 शब्द का होना चाहिए. यह भी ध्यान रखना होता है कि यह नाम रिपीट न हो, यानी पहले कभी न इसका नाम रखा गया हो. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
दैट्स राइट धर्मेंद्र, टुडे विल टेक यू टू स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट, नागालैंड. आप कभी नागालैंड गए?
नहीं, तो नहीं गया.
मैं भी नहीं गया. एन एक्सक्विजिटली पिक्चरस्क लैंडस्केप, द वाइब्रेंटली कलरफुल सनराइज एंड सनसेट, लश एंड वर्डेंट फ्लोरा, दिस इज द लैंड दैट रिप्रेजेंट्स अनइमेजिनेबल ब्यूटी, molded perfectly for a breathtaking experience. Today we explore one such picturesque landscape that is located in the forest of Choklanggang village in the Noklak district of Nagaland. The King Shi Niu, a natural lake found at the top of a mountain with an altitude of 3,000 meters above sea level approximately.
Choklangant is a small village located between the lofty mountains of Kulai King, Kan King and Anshao King. The village is blessed with a serene landscape and rich biodiversity, and King Shangnyu is one such beauty that can be a bliss to the eye of every visitors. King Shangnyu is a natural lake at the top of a mountain with an altitude of 3,000 meters above sea level approximately. It is located in the forest of Choklangan village, Noklak, which takes 5 to 6 hours trek with moderate terrain. Crossing dense virgin forests, one may enjoy the beauty of the creepy rhododendron trees and rare fruits which is called Longzong Lhasa, which are only found at higher altitudes. The month of June till October-November first week, it gives crystal clear water. The area is a low grassland with a variety of Longzong Lhasa and many wild herbs. The month of December last week begins the experience of snowfall lasting till February. A resting place is constructed by the villagers at Longpoi Shed, a source of water for the Mithuns, which takes 3 hours trek from the village, which ultimately turns out to be the base camp for visitors. A giant rock like a tree which stands above the tree known as Longpang Niu is also another amazing element which boosts the trekkers and hold their breath for the next move. For Parikrama, this is Asunyo from Kohima.
और गुजरात सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा पुनः शुरू की गई है। गुजरात सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा 5 मई 2022 को शुरू की गई ये एयर एम्बुलेंस सेवा मरम्मत के बाद फिर से शुरू कर दी गई है। ये सेवा बहुत ही उचित मूल्य पर चलाई जाती है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। ये सेवा नागरिक उड्डयन विभाग और जीवीके ईएमआरआई द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है, जिसका लाभ सभी नागरिक उठा सकते हैं। एयर एम्बुलेंस सेवा प्राप्त करने के लिए नागरिक 108 पर संपर्क कर सकते हैं। इस एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठाने के लिए नागरिक 108 पर संपर्क कर सकते हैं, जैसा हमने बताया आपको। और अहमदाबाद के संवाददाता भरत देवमणि की ये रिपोर्ट सुनते हैं।
गुजरात सरकार द्वारा अब तक 42 एयर एम्बुलेंस उड़ानें सफलतापूर्वक संचालित की जा चुकी है। जहां तक विमान और उपकरणों की बात है, एयर एम्बुलेंस बीच क्राफ्ट 2000 विमानों का उपयोग करती है। विमान डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, आवश्यक चिकित्सा उपकरण जैसे वेंटिलेटर, डिफाइब्रिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और ईसीजी मॉनिटर आदि से सुसज्जित है। एयर एम्बुलेंस अब मरीजों को एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे तक शीघ्रता से पहुंचा सकती है, ताकि उन्हें गंभीर परिस्थितियों में त्वरित और समय पर चिकित्सा उपचार मिल सके। यह गुजरात में चिकित्सा सहाय को अधिक सुलभ और कुशल बनाने में काफी मदद करेगा। परिक्रमा के लिए मैं भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
In view of the upcoming Lok Sabha elections, we present you capsule based on state profile, giving details of number of phases, date of polling, number of seats and other relevant facts via correspondence. Balasore Lok Sabha constituency in Odisha is all set to once again witness a triangular contest as three major political parties, the state's ruling BJD, the opposition BJP and the Congress, have fielded potential candidates in the fray. The BJP has fielded former Union Minister and sitting MP Pratap Chandra Sarangi, while former Union Minister Shrikant Kumar Jaina is vying for the honour of a Congress ticket. The BJD has landed BJP turncoat Lekhashri Samantha Singhar. The high-profile constituency is going through a high-voltage campaign by star campaigners of all the major parties, and voting will be held on the last phase of general elections on the 1st of June. A report from our Odisha correspondent on this Lok Sabha constituency.
Balasore is one of the 21 Lok Sabha constituencies in Odisha. Former Union Minister and incumbent MP Pratap Chandra Sarangi has been nominated by the BJP, while former Union Minister Shrikant Kumar Jaina will be representing the Congress party. Lekhashri Samantha Singhar, who was previously associated with the BJP, has been chosen by the ruling Biju Janata Dal. Balasore has a history of intriguing electoral outcomes, as voters have not shown permanent allegiance to any specific party or candidate. This time, Pratap Sarangi, the incumbent BJP MP, expresses confidence in the positive efforts of the BJP-led NDA government and Prime Minister Narendra Modi's special focus on the development of Odisha. Srikanjana believes that the developmental work he carried out in Baleswar during his previous tenure will contribute to his victory. BJD candidate Lekhasri Samantasinghar highlights Odisha Chief Minister Navin Patnaik's impeccable reputation and comprehensive development agenda. As the election campaign is at its peak, Lekhasri Samantasinghar has emerged as a prominent face of the BJD. Pratap Sarangi has been touring the constituency and adopting a multifaceted strategy that emphasizes development initiatives. He is also attempting to capitalize on any potential dissatisfaction or disillusionment among BJD supporters. This avails Lekhasri's switch of loyalty. Srikanjana's political background includes serving as a member of parliament of the Congress Party in Odisha. Finally, his presence in the political arena could help to divide the opposition, as he may be able to garner support from other parties or factions within the opposition. Prakash Das, Akashvani News, Bhubaneswar.
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज हम बिहार और झारखंड की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं पटना साहिब सीट के बारे में।
भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है। महागठबंधन से कांग्रेस ने अंशुल अभिजीत को टिकट दिया है, जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ष 1957 से 2004 तक कांग्रेस इस सीट पर 3 बार विजेता रही है, जबकि भाजपा और सीपीआई को 2-2 बार जीत मिली है। भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी नेतृत्व जी तोड़ मेहनत कर रहा है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी पटना में पिछले दिनों अपना पहला रोड शो किया। वहीं कांग्रेस के अंशुल अभिजीत इस क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के वोट बैंक के समर्थन से लोकसभा की चुनावी नैया पार करने का आसरा देख रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
And now time for Defence News Capsule from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defence. The report has been filed by Broadcasting Officer Anand Saurabh.
We all know that Edmund Hillary and mountaineer Tenzing Norgay were the first people to reach the summit of Mount Everest, the highest mountain peak in the world. The two men reached the summit by late morning on 29th of this month in the year 1953. But who was the first Indian to achieve that feat? It was again the same month of May, and the date was 20th of May 1965, when a courageous Indian and a gallant soldier of Indian Army, late Lieutenant Colonel Avtar Singh Cheema, stood atop Mount Everest with his group, thus becoming the first Indian to climb Mount Everest. We spoke to Group Captain Jai Kishan, the principal of prestigious Himalayan Mountaineering Institute. So first of all, welcome to our show.
Thank you, Anand, for giving me this opportunity to share about some interesting fact about Cheema, sir, our legend.
If you can tell our listeners in brief about one of the greatest mountaineers of India, Colonel Avtar Singh Cheema.
Lieutenant Colonel A.S. Cheema, he served as the fifth principal of Himalayan Mountaineering Institute from 1971 to 73. He happened to be a distinguished mountaineer. He was a pivotal member of India's first successful Everest expedition in 1965, reaching the summit and becoming the first and still the only principal of HMI to achieve this remarkable feat. He was awarded the prestigious Padma Shri. As a mountaineer and in the field of adventure sports, there is a lot to learn from our legends, our heroes and the legend climbers, especially from Colonel Cheema. In his words, most mountaineers stand with their feet arrogantly placed on the mountains. But in his words, he said, no one should not put one's feet there on top of mountain. It's a respect to the mountain. This is what we learn from our legend, our heroes.
How climbing Mount Everest has changed over time?
Earlier, there were limited information, limited knowledge, and the limited equipment. And it was not sure about the durability, whether the equipment work, not work. But in present era, we have information, we have technology, and the best of the equipment available. And Everest stands the tallest and the highest peak on this planet. The glamour of climbing Everest is going to be there forever. As a mountain, what problems we are seeing in mountains, that is overcrowding over mountain. People are in rush, people are in race.
to climb Everest as early as possible without undergoing much of training, without undergoing full preparation. And that is why from the first traffic jam which we heard in mountains was somewhere just before COVID, I think in 2019 or so. Even this year, more than around 500 permits have been given by Nepalese government for Mount Everest.
Colonel Chima was also the head of Himalayan Mountaineering Institute under Ministry of Defense. If you can share about his leadership qualities and vision as you are also carrying forward his great legacy.
In so many years, as we celebrate the 70th anniversary of the Institute, as we came into existence in 1954, his legacy is immortalized within the Institute through the Indo Rock Climbing Wall, named in his honor and called Chima Wall.
Your institute, HMI, is one of the top mountaineering institutes in India. And how do you promote this adventurous sport amongst the youth?
In last 70 years, Himalayan Mountaineering Institute has trained more than 50,000 students and mountaineering aspirants in the field of mountaineering and adventure sports and allied adventure sports. And the students trained by us have climbed various peaks in India and abroad. You name the peak and I am sure that our students must have left their footprint atop that mountain. Whatever we are today, not only India, we are matching a standard at the Worldwide Mountain Institute. This standard are not achieved only in single or one day. It is achieved by over a long period of time. Long and very deep contribution by our legends, our climbing heroes, our principal, our staff. We are carrying forward legacy of our heroes and the renowned mountaineers to the extent that you are aware that Major Andy Jarrah, the founder principal of the Institute, from 1954 to 1958. Unfortunately, we lost him during an expedition to Mount Choyu in 1958. And Tenji Norgay Sherpa, the legend, himself was the first field director of the Institute. So now now if you go back to the history, go back to the root of the Institute, they are the two pillars who raised this Institute. And the training pattern, the systematic way of teaching mountaineering, the infrastructure are of a world standard, and we are confident that we can provide any kind of mountaining or the allied sports training at HMI.
Thank you so much for Parikrama. This is Anand Saurav from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense.
And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember transnational freedom fighter Champakaraman Pillai, who died on the 26th of May 1934. Pillai was the forerunner of Ras Bihari Bose and Subhash Chandra Bose in organizing an Indian army abroad to strike against the imperialist British force at home. Pillai is credited with coining of the salutation and slogan Jai Hind.
Champakaraman Pillai was born on the 15th of September 1891 at Cochin in Kerala. Even during his student days, he was quite attracted to books and periodicals preaching nationalism and heard the speeches of all political leaders who were in the forefront of the freedom movement. The personality of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak and his writings in his journal Kesari turned Champakraman into a patriot and revolutionary. When Tilak was arrested and sentenced to transportation, Champakraman was deeply moved and took a pledge to dedicate his life at the altar of the motherland, fighting for her freedom. Champakraman came into contact with an Englishman who was working as a spy for the Germans, and with the latter's help, he left the shores of India when he was just a lad of 17 years.
Champakaraman first went to Colombo and from there to Switzerland. At Zurich, he completed his education and took a doctorate in engineering. When the First World War broke out, Pillai, with the help of the German embassy, formed the International Pro-India Committee in 1914, with Zurich as its headquarters and himself as the president. Pillai moved to Berlin in October 1914 and started the Indian Independence Committee. Many prominent Indian revolutionaries abroad, including Lala Hardayal, Taraknath Das, Barkatullah, Dr. Chandrakant Chakravarti, Dr. Bhupendranath Dutt, Dr. Prabhakar, Virendra Chattopadhyay, Virendra Sarkar, and Hirambalal Gupta joined him to work out the program.
Champakraman Pillai won the confidence of the Germans and led the operations of German Navy in the Indian Ocean. The British government announced a reward of £1,00,000 to anyone who would capture Champakraman Pillai and hand him over. But the brave son of India always eluded them.
Pillai founded the Indian National Volunteer Corps during the First World War and prescribed military uniform and discipline to the volunteers. In July 1914, Pillai gave a message from Berlin to the Indian soldiers that it was time for them to rise in revolt and fight the British for the emancipation of the motherland. Later, in 1919, when Champakraman Pillai met Netaji Subhash Chandra Bose in Vienna, he explained his plan of action to Netaji Subhash. It is believed that Subhash Chandra Bose chose the path shown by Champakraman Pillai and fulfilled his dream by organizing the Indian National Army during the Second World War.
Champakraman Pillai had the privilege of being Minister of the Provisional Government of India set up in Afghanistan in December 1915 with Raja Mahendra Pratap Singh of Kabul as President. However, the defeat of the Germans in the war shattered their hopes. After the First World War ended, the relationship between the Germans and self-respecting Indian revolutionaries was strained.
He fell a victim to the wrath of the Nazis, as it is believed that he was slowly poisoned by them. Pillai died on May 26, 1934. His wife, Lakshmi Bai, underwent indescribable sufferings as the Nazis made her life miserable. But she preserved Pillai's ashes, his diary and secret documents. As per Pillai's last wish, Lakshmi Bai brought back his ashes to India, where they were ceremonially immersed in Kanyakumari with full state honours.
We also remember independence activist Muhammad Yusuf Naqshbandi, who was martyred on the 26th of May 1946. Born in 1923 in Srinagar, Jammu and Kashmir, Naqshbandi was a committed political worker. He actively joined the political movement for responsible government in Jammu and Kashmir in 1946. Naqshbandi was killed at the Khankai Maula in Srinagar on the 26th of May 1946 in the state army's firing on a procession he joined to protest against the Maharaja's tyrannical rule. We salute the great son of the soil.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में फाइनल मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। श्रोताओं, आज सबसे पहले याद करते हैं हिन्दी साहित्य के कथाकार, गीतकार और एक समीक्षक श्रीकांत वर्मा को। उन्होंने एक पत्रकार के रूप में काम किया और 1956 से नरेश मेहता के साथ प्रख्यात साहित्यिक पत्रिका कृति का दिल्ली से संपादन एवं प्रकाशन किया। दिल्ली में वे पत्रकारिता से जुड़े। उनकी कुछ मुख्य रचनाओं की बात करें तो काव्य रचनाएं भटका मेघ, उन्होंने उपन्यास दूसरी बार भी लिखा, श्रीकांत वर्मा का कहानी संग्रह झाड़ी, संवाद घर भी बहुत प्रसिद्ध हुए और कई पुरस्कार भी उनको मिले। और हम आपको बता दें कि उनका जो है एक जो पुरस्कारों का सिलसिला था उसमें कई सारे पुरस्कार रहे और मध्य प्रदेश सरकार ने भी उनको पुरस्कृत किया, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला।
टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजलक्ष्मी देवी। शी वॉज एन इंडियन एक्ट्रेस, प्राइमरली एक्टेड इन बंगाली फिल्म्स। शी वॉज बिकम ए रेगुलर एक्ट्रेस इन द बंगाली स्टेज एंड फाइनली जॉइन फिल्म्स। हर फर्स्ट मूवी बीइंग पल्ली समाज इन 1932। She carried on as a successful stage actress and also took part as character artist in films and went on to act in over 200 films in different languages. And, well, she met with a car accident while she was returning from an outdoor shooting of her last Bengali film, Jiban Jigyasa, and we have a song from that movie.
Tumari baka uchuk jilik mare ji ki miki
जानी मानी चित्रकार, लेखक और कला समीक्षक डॉक्टर अलका रघुवंशी का भी आज ही के दिन साल 2021 में निधन हुआ। वे भारत की पहली प्रशिक्षित कला क्यूरेटर थीं जिन्होंने गोल्डस्मिथ कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड के आधुनिक कला संग्रहालय से प्रशिक्षण प्राप्त किया था।
Today is the birth anniversary of Gopi Shanta, 26th May 1937. She was born. She's better known by her stage name Manorama, and she was an Indian actress, comedian, and playback singer. And she appeared in more than 1,000 films and 5,000 stage performances and several television serials, predominantly in the Tamil language. Telugu, Kannada, Malayalam and Sinhala until 2015. She received the National Award for the Best Supporting Actress for her performance in the film Pudhiya Padai, and we have a song from that movie.
Pachapulla aluduchinna paattu paadala Inda nisa vachcha kodandakkiya paattu poduma.
प्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर बैज का जन्म आज की तारीख को 1906 में हुआ. आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में उनकी गिनती होती है, और हम बताएं कि वर्ष 1970 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय कला में अमूल्य योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया. और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए धर्मेन्द्र मणि राजेश और वीसी प्रमोद को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की.
नमस्कार.